कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो हमारे जन्म मेरे इस जन्म में मैंने कुछ भी नहीं गलत किया। कई बार कहते हैं कि मेरे मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने इस जन्म में वो ऐसा घिनौना कार्य किया हो। मुझे इतना बड़ा सजा क्यों दिया जा रहा है? लेकिन कई बार हम उनको कहते हैं कि क्या आप इसी जन्म का स्मृति आप जानते हो, लेकिन पूर्व जन्म का हिसाब किताब कौन चुकाएगा? आपने पूर्व जन्म में जो कुछ किया है उसका हिसाब कौन चुकाएगा? कई बार लोग कहते हैं ये तो सब केवल कल्पना मात्र है, किससे देखा है पूर्व जन्म? तो फिर हम उनको बताते हैं कि 2 साल पहले इसी समय आप क्या कर रहे थे ये आपको स्मरण नहीं है। तो क्या इसका अर्थ ये होता है कि 2 साल पहले आप जिंदा नहीं थे? इसका अर्थ ये तो नहीं होता। इसका अर्थ है कि अपनी स्मृति पे इतना भरोसा मत करो कि मुझे इतना याद है। इसलिए पूर्व जन्म में जो कुछ हुआ है उसको आप भूल चुके हो, उसको आप याद के शरीर बदलने से। तो अनेक अनेक जन्म बीत गए हैं। अब अर्जुन ने भगवद गीता के 4 अध्याय में कहा है, बहु ने मैं जितानी जन्मानी तब चार। उसके पहले अर्जुन ने पूछा था कि मैं ये कैसे मान लूं कि आपने ये ज्ञान सूर्य के देवता देवस्वान को करोड़ों साल कर दिया, मैं कैसे मान लू? भगवान ने उनको ये कहा, अर्जुन मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं लेकिन वो सबको मुझे याद है, मैं स्मरण करूँ लेकिन तुम्हें स्मरण नहीं। इससे हमारे कई जन्म हो चुके हैं, रोज हम जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलता है। और आज आपने सफेद रंग पहना है, कल नीला पहनोगे, कल पीला पहनोगे, उसके बाद वो पहनोगे। तो आप जब मिरर के सामने जाते हो आपके जो कुछ दिखाई देता है वो आपको कुछ साल के लिए दिया गया एक कपड़ा है, सेट है। आपको आप ऐसे दिखते हो इस जन्म में, दूसरे जन्म में आप कुछ और दिखोगे, पिछले जन्म में कुछ और दिख रहे थे। आज आप इंडिया के रहने वाले दिख रहे, क्या पता पूर्व जन्म में आप व्हाइट बॉडी वाले होते, विदेशी या फिर अफ्रीकन होते, ब्लैक बॉडी, क्या पता हम कैसे दिखते थे। इसलिए ये जानना बड़ा आवश्यक है कि पहले तो आपके अनेक कर्म, अनेक जन्मों के कर्म का फलम बहुत है, अनेक जन्म अनादि कर्म फल पड़ी भवार न जल। और जैसे बहु सागर के खार सागर में हम गिरे हुए हैं। सागर का तुलना क्यों किया जाता है? ये आपने कभी सागर देखा? ऐसा पूरी द्वारका में अभी बॉम्बे में गुजरात के लोगों जन्म लिया सबसे ज्यादा यही स्थान पे समुद्र देखने को प्राप्त होता है गुजरात में उनके आस पास के है। लेकिन हम जो समुद्र देखा है वो तो बहुत पास से देखा है। पास से अर्थ का आप किनारे से थोड़ा सा आगे जाते हो उससे भी नहीं, बोट में भी जाओगे तो अगर आप बेट द्वारका जाओगे तो बोट है तो इधर से कुछ किनारा बंद होगा तो सामने किनारा दिखना शुरू हो जाता है ना। लेकिन अगर आप अटलांटिक ओशन देखोगे तो उसका कोई सीमा ही नहीं। आप जैसे आप अमेरिका जैसे जाते हो हम लोग हवाई जहाज से ऊपर से जाते ऐसे कुछ दिखाई नहीं देता मुझे हवाई जहाज से। लेकिन वो समुद्र ब्लू कलर का होता है ना तो ब्लू ब्लू इमेज थोड़ा दिखता है आपको बस कि कुछ है पीछे उसका जो क्षितिज होता है वो ब्लू जैसा होता है। ऐसा कुछ बादल होते तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसका अर्थ है कि जहां बड़ा समुन्दर उसमें अगर कोई व्यक्ति गिरे तो उसको बचाने का कोई उपाय है कोई उपाय नहीं। इसलिए इसकी तुलना की थी सागर के साथ कभी भवान न चले तभी वारे ना देखी उपाय। उसमें से तैर करके बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है हमारे पास कोई उपाय नहीं। ये विषय हला हले हमारा हृदय जो है इतनी सारी इच्छाओं से जल रहा है। इच्छाओं का कारण क्या होता है कि इच्छाओं से जल रहे कारण क्या होता है आप बहुत सारी इच्छा करते हो ईश्वर ने डिजायर लेकिन वो पूरी नहीं होती। इच्छाएं जो इतनी सारी होती है वो पूरी नहीं होती और वो नहीं पूरी करने का जो दुख होता है वो इच्छा पूरी करने के सुख से अधिक होता है। आपकी इच्छा जो है वो पूरी अभी 100 इच्छा में से 2 इच्छा पूरी होती है और 98 इच्छा पूरी नहीं होती। 98 इच्छा जो पूरी नहीं होती उसका उसके कारण रोता रहता है पूरा दिन और वो जो 2 इच्छा पूरी होती है वो अपने आप को बड़ा सुखी मानने लगता है। मैं देखो कितना बड़ा सुख सोचता है 98 इच्छा को हाय हाय अब क्या करेंगे और वो ये 98 इच्छाओं को पूरी करने में अन्य 100 इच्छाओं का जन्म हो जाता है। उसमें से एक दो पूरी हो गई लेकिन कोटा तो बढ़ गया है ना। 100 में से 2 पूरी हुई 200 में से 4 पूरी हुई लेकिन जो नहीं पूरी हुई उसका कोटा तो बढ़ गया। तो ये और इतना कष्ट देता है ये विषय हला हले दिवा ही आ गए इनका हला हल विश्व जैसा ये इच्छाएं हमारी दिन रात हमारे हृदय को कष्ट दिन रात कष्ट। दूसरा एक कारण ये भी है कष्ट का कि आप बड़ी श्रद्धा के साथ किसी भौतिक सुख को भोगने का प्रयास करते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ कि मुझे इससे आनंद मिलेगा इससे सुख प्राप्त होगा लेकिन इसका परिणाम विपरीत आता है। कैसे विपरीत आता है वो सुख थोड़ी देर के लिए आके चला जाता है और फिर आपको असंतुष्ट अवस्था में छोड़ के चला जाता है। अभी ऐसी असंतुष्ट अवस्था का परिणाम यह आता है असंतुष्ट अवस्था का कि आपकी इच्छा डबल हो जाती है। ऐसा समझ लो कि आपको बड़ी भूख लगी है खाने या कुछ कोई भी इच्छा रहेगा खुजली खुजली का जो खुजली जो होती है तो आपको जैसे थोड़ी देर खुजाओगे आपको लगता है कि जैसे क्या आपको आनंद आ रहा है स्वर्ग का खुजली हो रही है। लेकिन अगर आपको खुजाने के बाद थोड़ी देर के बाद उसको इतना कष्ट होता है तो डॉक्टर के पास जाना होता है खून आ गया क्या करें ठंडी जगाओ ये करो वो करो। इस तरह से इच्छाओं के कारण दिन रात प्रयास तो हमारा पूरा होता है कि हम सभी इच्छाओं को पूरी करें। प्रयास तो हमारा पूरा होता है इसके लिए जो कुछ आवश्यक है बांग्ला चाहिए तो बांग्ला लगेगी गाड़ी चाहिए तो गाड़ी लेंगे, धन चाहिए तो धन लेंगे, जो कुछ भी इसके लिए आवश्यकता हम सब करेंगे, क्योंकि हमारे पास शक्ति है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास बल है, लेकिन परिणाम देते जाते हैं, परिणाम इसके लिए जाते हैं। इसलिए नादेखी उपाय, पहली बात है नादेखी उपाय, ये विषय हला हमें विवाद ऐसी लिया जाए, निरंतर कष्ट अनुभव करते हैं, मन कभी सुख नहीं पाए, और मन में सुख का एक अंश भी नहीं आता, सौदा तो घाटे का सौदा है, आपको रोना ज्यादा होता है, अधिक होता है, और प्रसन्न होना कम, तो घाटे का सौदा है, मटेरियल लाइफ इज बैड बार में का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसे आशा पाश, आशाओं का इच्छाओं का जो पाश है सहस्त्र शत बहुत सारी इच्छाएं हैं हमारी, और हमारा वास्तव में यही समस्या है कि हम इच्छाओं के दास बन गए, आशा पाश शत अभिगत, अभिगत का अर्थ होता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है, बस ये एक बार थोड़ा कर लो, बस वो एक बार ये हो जाए, बस ये थोड़ा धन की आवश्यकता ये कर, लेकिन ये नहीं रुकेगा, ये आपके हाथ में नहीं है, आप इसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि कई चीजें होती है कि जो आपको स्वयं निश्चय कर लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा, आप समय के ऊपर उसको छोड़ नहीं सकते, तो आशा पास सर्वस्व प्रवृत्ति उर्मेरता है खेला, और ये प्रवृत्ति प्रवृत्ति उर्मेरता है खेला में ये जो हमारी प्रवृत्तियां टेंडेंसी कि हम तो स्वतंत्र विचार के है, हम तो वही कार्य करेंगे कि जो हमारा मन कहेगा, हम किसी की सुनेंगे, उनकी सुनेंगे जो हमारी सुनेंगे, या फिर जो हमें मान पूजा प्रतिष्ठा देता है उसकी हम सुनेंगे, तो ये सब जो विचारधारा है स्वतंत्रता, ये मुख्य मूलतः हमारे अहंकार के वश है, एक्चुअली हमारा अहंकार जो है बहुत बड़ी समस्या है ना, हम चाहते हैं कि अहंकार से मुक्त हो, लेकिन हम थोड़ा भी अगर हमारा कोई अपमान करे, थोड़ा भी अगर हमारी इच्छा से कुछ विपरीत हो, तो हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, और तब आपका ब्लड पूरा एकदम बॉइल होने लगता है, थोड़ा ब्लड बॉइल होता है, फिर आप परेशान हो जाता, लंबी सांस लेनी पड़ती है, अब क्या करें, ऐसे कई समस्या आती है, लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि हम समझते हैं कि मुझे कोई मना नहीं कर सकता, संसार में आज तक कोई पैदा है कि जो मुझे मना है, ऐसे मिल जाते आपको हजार लोग कि जो आपको मना कर देते आपकी बात को, आप परेशान हो जाते, इसलिए ये ईगो प्रॉब्लम जो होती है वो यूनिवर्सल कॉमन प्रॉब्लम, सब लोग को ये समस्या है, तो ये ईगो का जो समस्या है इसके कारण हम लोग फंसे रहते हैं, काम क्रोध आदि छोय बाट पाले देव भय, काम क्रोध मोह लोभ, काम क्रोध लोभ मोह मत बसते हैं, ये जो शेष शत्रु है ये निरंतर हमें भयभीत करते हैं, भयभीत करते तो भी नहीं, तो कोई नहीं मिलता, भयभीत का अर्थ क्या है, हम काम के प्रभाव में आ जाते हैं, काम के प्रभाव में आते थे, काम के प्रभाव में आता है व्यक्ति या क्रोध के प्रभाव में आता है, वो कैसा दिखता है पता है, तो उसको अगर आईना दिखाओ ना कि आप कैसे दिखते हो, तो कैसा दिखता है, वो हॉन्टेड दिखते हैं, हॉन्टेड हॉन्टेड कैप जानता, हॉन्टेड कैप होता है कि जिसको भूत लगा हुआ है, ऐसा दिखता है 100। तो कैसा करता है वो, एक्चुअली वो नहीं कर रहा है, वो और कुछ कर, कोई और व्यक्ति आके कुछ कर रहा है ऐसा लगता है। 100 ऐसे होते हैं, ये आपको अरे भाई ये क्या कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है, उसके अंदर जो फॉरेन एंटिटी आया वो कर रहा है ये सब काम उल्टा सीधा। तो ये काम क्रोध में व्यक्ति ऐसा हो जाता है, तो काम के प्रभाव आता है तो अपने आप को भूल जाता है, वो आप कौन भाई, आप सब सही, आप क्या कर रहे हो, क्या ये आपको शोभा देता है या नहीं देता, भूल जाता है। काम क्रोध लोभ, लोभ भी बड़ी अजीब चीज है, लोभ का नाम लेते ही उसका कोई सीमा ही नहीं है, लोभ का कोई सीमा ही नहीं है। राम मंदिर ने कहा था कि व्यक्ति जब अपनी आवश्यकता से संतुष्ट नहीं होता तो उसको संसार की कोई भी चीज दे दो संतुष्ट नहीं होता है, जो अपनी रिक्वायरमेंट है उससे वो अगर वो बढ़ाता देता है रिक्वायरमेंट को तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो लोग बड़ी भयानक चीज है, आप ये सोचते हो बस कोई 20 लाख रुपया हाथ में आ जाए, पर बस 1 करोड़ रुपया अगर हाथ में आ गया तो भगवान का से, जब आपके पास 1 करोड़ आएगा उसके पहले आप सोचोगे 2 करोड़ अच्छी करेगा, 2 करोड़ से क्या अच्छा सर कोई प्रॉब्लम, जब आपके पास 2 करोड़ की सुविधा होगी तो आप सोचोगे नहीं नहीं अगर मेरे पास 4 करोड़ होगा तो मैं कुछ और डोनेशन भी दे सकता हूँ। तो ये चक्कर चलते 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 आप बूढ़े हो जाओगे, बोले आप तो फोर्सफुल रिटायरमेंट, गवर्नमेंट भी धक्का मार गया निकल यहाँ से। तो इस तरह से हमारा जो मटेरियल डिजायर है काम छह बात पड़े गए भय अवसान हविल आशी बेटा अवसान हविल, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा मृत्यु करीब आ गया हूँ। ज्ञान कर्म ठगद हुई, ज्ञान और कर्म, और फिर मुझे लगा चलो हम भगवान का सेवा करते हैं कुछ, तो उसमें फिर ज्ञान में फंस जाते हैं, ऐसे कोई ज्ञान मार्ग निराकार को उपासना करने लगता है, कोई देवताओं की उपासना करने लगता है, इस तरह से उसमें फंस जाते हैं, या फिर ज्ञान कर्म कर्म में देवताओं की उपासना करता है, ये इधर ये मेरा पूरा करोगे तो मैं क्या बोलते उसको मन्नत, ये होगा तो ये पूरी करेंगे, वो करेंगे, ये होगा तो वो पूरी करेंगे, उसमें बेचारा फंसा रहता है, ये पूरा करेंगे उसमें वो करेंगे। तो ज्ञान और कर्म जो है वो एक रूप से देखा जाए तो ठग है, ठग ठग का है चीटर्स, वो आपको धोखा देते हैं, ठग तो मोरे प्रता है, ऐसा लगा वो जो मुझे खींच रहे, कैसा लग रहा है जैसे कि दुख के अघात सागर में फेंक देते। कई बार कहते हम लोग कि अगर कोई एक व्यक्ति डूब रहा है, डूबता हुआ व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, नौका कोई सहायता भेजने से वो होता है, लेकिन डूबता हुआ व्यक्ति के पास अगर ज्ञान भी होता है, ज्यादा बुद्धि भी होती है, जैसे साइंटिस्ट होता है या कोई ऐसा नॉलेज भी होता है ज्ञान, तो डूबते हुए व्यक्ति के कंधे पे अगर एक पत्थर का शिला लगा दो, शिला से बांध दो उसको, तो क्या होगा, तेजी से डूबेगा है ना, ऐसे तो डूबने ही वाला था, लेकिन अब तो इसके पास शिला भी है, पत्थर भी लगाया हुआ है उसके साथ, तब तो तेजी से डूबेगा। मीन्स जिसके पास अधिक ज्ञान रूप धन सौंदर्य कीर्ति वैभव ये सब जिसके पास अधिक होता है तो उसके पास डूबने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, वो डूब जाता है। इसलिए कहा जाता है जिन्हें अधिक दया कर रहे भगवान, पंडित खुले ना क्या वो खुले तो जिन्हें अधिक दया करेगा, जो जिसके पास कुछ नहीं है भगवान उसको अधिक दया करते हैं, और जिसके पास बहुत सारे वैभव है सब कुछ है तो जब भी शरणागत नहीं होता भगवान, भगवान को शरणागत होने में उसको टाइम लगता है, उसको बोलना पड़ता है, उसको कोई बोलता है तो उसको तब तुम मुझे सिखाओगे, तुम मुझे सिखाओगे, उसे वो स्वीकार नहीं कर पाता। भगवान खुद सिखा रहे सबको, भगवान से बड़ा कौन है। तो आगे कहते हैं कि ऐसे दयनीय अवस्था में, दुखी अवस्था में, भाव सागर में डूबे हुए, इतना सारा बोझा उठाए हुए, इतना जल रहा हूँ कष्ट के मारे, इतना दुखी हो रहा हूँ, इतना एंग्जायटी है, इसलिए कृष्णा ए है ना समय बंधु, ऐसे समय में कृष्णा आप मेरे परम मित्र हो, यू आर द बेस्ट फ्रेंड। भगवान को बंधु, बंधु का अर्थ होता है बड़ा करीब का मित्र है, कृष्ण इज रियल फ्रेंड। हमारे यहाँ के जो मित्र होते हैं वो तो आज मित्र है कल नहीं, ये शरीर जब तक है तब तक मित्र है, शरीर नहीं फिर नहीं, वो फोटो का मित्र रहेगा, आत्मा का मित्र नहीं रहेगा। बात अगर आत्मा का भी मित्र होगा लेकिन उसको पता ही नहीं कहाँ कहाँ गया उसका मित्र। तो इसलिए एक ही मित्र ऐसा है कि जो आप कभी नहीं छोड़ेगा, आप उनको छोड़ने का प्रयास करोगे फिर भी वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा भगवान कहते तुम तो मूर्ख है, तुझे कुछ आता नहीं, लेकिन मुझे तो बुद्धि है ना, मैं तुझे ऐसे फंसना नहीं दूंगा, किसी में पकड़ दूंगा। क्यों? हे कृष्णा, हे ना समय बंधु, तुम्ही कृष्ण के पास, कृष्णा तुम मेरे बंधु हो, सखा हो, और आप वास्तव में करुणा के सागर हो, कृपा सिंधु, इसलिए मुझे कृपा करी तोलो मोरे बोले, मुझे बलपूर्वक इसमें से निकाल लो, ये इसमें मैं तो चाहता भी नहीं, देखो मेरा दुर्भाग्य, मैं तो चाहता भी नहीं कि मैं ये बड़े सागर से बाहर आऊं, हमें रस्सी फेंक रहे, आओ बहुत लोग रस्सी फेंकते हैं, आओ चलो पकड़ लो इसको, हम बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो भी नहीं जाए, इसलिए कह रहे तोड़ो मोड़े भले, बलपूर्वक बांध के खींच के बाहर निकाल लो मुझे इसमें से, मत रखो इसको सागर के। फिर कह रहे हैं उसी तो किन को रे थोड़ी, मुझे बहुत तुच्छ प्रतीत मान करके, दास समझ करके स्वीकार कीजिए, आपके पाद पद्मों में की धूलि के मार जैसे आप मुझे स्वीकार कीजिए, ऐसा समझ लो कि मैं एक छोटा सा कौन आपके चरणों में। भक्तों और ठाकुर कह रहे कि मुझे इस तरह से आश्रय दीजिए, क्योंकि अभी तो मैं नित्य दास, कृष्णा मैं वास्तव में ये शरीर नहीं, मैं आपका नित्य दास हूं, किंतु माया के कारण भूल चुका हूँ, भूलिया माया के कारण, माया के कारण भूला हुआ हूँ, मैं आपका दास हूँ, इसलिए मैं बद्ध होकर के आपके शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार किया। बड़ा सुंदर स्वामी भक्तिवत ठाकुर ने लिखा है। तो इसमें अगर आप भगवान प्रसन्न, भगवान की कृपा चाहते हैं तो विनम्र होना आवश्यक होता है, आपको विनम्र होना चाहिए। जैसे आप पिछले दिन सुन रहे थे कि भगवान के भक्तों को प्रभुपाद ने अपने आध्यात्मिक गुरु के जो गुरु भाई है उनको पूरा आदर देना चाहिए। जैसे साउथ इंडिया में जब चैतन्य महाप्रभु गए थे तो सभी वैष्णव का वो आशीर्वाद लेते थे, और प्रभुपाद भी जब अमेरिका गए थे तो सभी भक्तों का आशीर्वाद लेते थे। ये विनम्रता सबसे भक्तों का सबसे बड़ा गुण है। आज हम संक्षिप्त में चर्चा करने वाले हैं दो मिनट, जिसमें हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके साथ हमारा वरिष्ठ गुरु भाई उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो बिहेवियर है, हमारे सभी गुरु भाई के हम दास हैं, और वास्तव में विस्तृत रूप से देखा जाए सभी भक्तों के दास। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा गुरु भाई है तो ये अधिक अच्छा है, और वो मेरा गुरु भाई नहीं है तो थोड़ा कम अच्छा है, ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसका एक इतना बड़ा फैमिली है जिसमें सभी भक्त एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। तो अगर आप हमसे जो एडवांस है या कोई भी डिवोटी हमारे जितने भी भक्त हैं, सभी भक्तों के हम सेवक मात्र हैं और उनके अपने अपने जो लेवल है उस अनुसार हम सबकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। विशेष करके जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं उनके पास हमें क्या करना चाहिए, उनके पास बहुत ही विनम्र होकर के उनको प्रश्न पूछना कि मैं किस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ, कृष्ण भावना बोलना विनम्र होकर के प्रश्न पूछना चाहिए और जो भी आदेश दे उसको पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फिर प्रश्न पूछते हो फिर जब दवाई लिख के देते कि ये दवाई है तो इसको दवाई दे देगा, करना तो वही करूंगा जो मैंने सोच कर रखा, तो फिर उससे परिणाम नहीं आएगा। आपको दवाई देना पड़ता है, कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन, इंस्पायर टू बी द ओबीडियंट सर्वेंट्स। ओबीडियंट सर्वेंट्स का अर्थ होता है आज्ञाकारी, जो कहते हैं वही करते हैं। इसका परिणाम यह आता है कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो जैसे हमें पहले आपको बताया और डॉक्टर जैसा कहते हैं उसको 100% फॉलो करते हो तो क्या होगा, क्या परिणाम आएगा? अगर आपको बोला है कि कल शाम को डिस्चार्ज है आपका, लेकिन आप 100% फॉलो करते हो तो क्या चांसेस है?
सुबह डिस्चार्ज,
आपको सुबह ही डिस्चार्ज कर सकते है ना, कन्फर्म। सो भक्तों का अज्ञाकारी सेवक होने का अर्थ है वो जो भी आदेश दे उसे अक्षरश पालन करे। अब समस्या आ सकती है कि ठीक है प्रभु हम पालन करने को तैयार है, लेकिन हमें पालन करने के समय पे अगर कोई शंका होगी या फिर हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही कि ये पालन हम क्यों कर रहे हैं, तो क्या हमें पूछना चाहिए इस विषय में कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए राइट, कि मैं इसको पालन करने को तैयार हूँ लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा है अब इसका क्या करूं? तो उसका उपाय है कि आप उनको पूछो और वो जो कहते हैं उसको फॉलो करो, फिर भी समझ नहीं आ रहा फिर से पूछो, फिर भी समझ फिर से पूछो, इस तरह से आप अच्छे से पालन कर पाएंगे। फिर आपके जो इक्वल है अर्थात जो आपके कृष्ण भावनामृत का विकास आपका सबका एक समान हुआ है एक साथ है तो हमें उनके साथ मित्रता का व्यवहार करके भी उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको हतोत्साह नहीं करना चाहिए, हताश निराश नहीं करना चाहिए। ये ऐसा व्यवहार करते हैं कई बार सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन ये भक्त को अच्छा ही लग रहा है, ये भक्त मुझे इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये भक्त मेरी प्रगति से खुश नहीं हो रहे, तो ऐसा व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए कि सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और जो हमसे नए हैं बाद में जुड़े हैं और बहुत ज्यादा कृष्ण भावना में नए हैं उनको गाइडेंस देना चाहिए, उनको मार्गदर्शन देना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनकी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और उनको ज्ञान देना चाहिए। तो इस तरह से इसके उससे में आगे नेक्स्ट टाइम हम विशेष विस्तार से थोड़ा बात करेंगे। Today is Doctor, and I'm talking to you. Hare Krishna.